मुश्किल अल्फाज की वजाहत, तय्यिबात, तय्यिब लफ्ज़ जो है तोय या बा इसका रूट है और ये इस्तेमाल होता है पाक के लिए और इसमें जो है वो जाहरी तौर पर पाक होना भी और बातनी तौर पर पाक होना भी मुराद है। तो ये बात और इसका जो ऑपोजिट है वो है खबीस, और खबीस जो है इसके मानी क्या है, नापाक होना। और अब आप देखें कि यहां पर ये दोनों लफ्ज जो हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट जो है वो इस्तेमाल हुए हैं, तो एक है तय्यिब और दूसरा है खबीस। तय्यिब जो है जैसे पाकी के लिए अगर हम देखें तो कुरान में पाक के लिए पांच लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, एक है सुबहान, दूसरा कुद्दूस, तीसरा जकियतुन, चौथा तहूरा और पांचवा है तय्यिब। तय्यिब जो है इसका पांचवा दर्जा है, तो जाहरी निजास्तों से भी पाक, हलाल और खुश मंजर चीज को कहते हैं, हर वो चीज खुशगवार, पाकीजा और हलाल हो। लोग तय्यिबा नाम भी रखते हैं, खुशबू के लिए भी ये लफ्ज आते हैं, तीब खुशबू के लिए भी आता है, फन के हू मा ताबा लकुम मिन निसा, और तय्यिबतुन दिल की खुशी, तय्यिबतुन दिल की खुशी और सफाई को भी कहते हैं। शहरों के लिए भी आता है बलदतन तय्यिबतन, ऐसा शहर जो साफ सुथरा, खुश मंजर, अच्छे माहौल वाला, जरखेज हो। तो बड़ी वुस्सत से ये लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, और पांचवा दर्जा है ये पाकी का, सबसे ऊंचा दर्जा तय्यिबात। तयम्मम, तयम्मम जो है इसके इसका रूट है या मीम मीम यम, ये वो यम्मी नहीं है जो यहां पे बच्चे कहते हैं कि यम्मी यम्मी है ना, तो इसका असल रूट है या मीम मीम, इसके मानी होते हैं इरादा करना, और वैसे यम जो है ये पानी के जखीरे को भी कहते हैं, पानी के जखीरे के लिए यम लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर ये जो है ये इरादे के मानी में आया है और इरादे के लिए कुरान में सात लफ्ज हैं। तयम्मुम जो है ये इसका छठा दर्जा है, इसके मानी है जैसे इरादा करना, कहते हैं जब सोच और फिक्र की और मशवरे की जरूरत नहीं होती और शरई अहकाम को मुकम्मल करना है, तो शरई अहकाम को मुकम्मल करने का इरादा करना, उसका कसद करना, तो तब तयम्मुम लफ्ज बोला जाता है। एक होते हैं ना कि जैसे आपने पढ़ा था इरादा, किसी बात का दिल में ख्याल आना, हम्मा उस इरादे पे सोच विचार करना, फिर आपने अज़्म पढ़ा था कि सोच विचार के बाद जो है पुख्ता इरादा कर लेना, तो ये जो तयम्मुम है ना इसमें सोच विचार की जरूरत नहीं, अल्लाह ने को हुक्म दिया है शरई हुक्म की तामील का इरादा करना। कहते हैं ये लफ्ज कुरान में सिर्फ दो दफा आया है, एक दफा हुक्म देने के लिए और एक दफा नहीं के लिए, दो दफा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। और फलम तजिदु मान फतयम्ममु सईदन तय्यिबा, जब तुम्हें पानी ना मिले तो तुम इरादा करो पाक जमीन का, तो तयम्मम तयम्मम वहां पे आया। और दूसरा क्या है ये इस वक्त है यहां जो पढ़ रही है, वला तयम्ममुल खबीसा मिन्हु तुनफिकून वलस्तुम बिआखिज़िही इल्ला अन तुग़मिदु फीह, शरई हुक्म की तामील का इरादा करना। और अगर आप इसको समझना चाहती हैं कि ये पानी के जखीरे को भी कहते हैं, अब आप देखें कि पानी के लिए भी कुरान में बहुत से अल्फाज जो है वो इस्तेमाल हुए हैं, और उसमें से एक लफ्ज जो है वो यम का भी है, यम पानी, पानी और इसकी जो इकसाम है। अब जैसे एक है औदिया, ऐन, अनहार, सर्री, और 6 लफ्ज हैं जो कुरान में आए हैं, और यम उसका 5वां दर्जा है। अहले लुगत कहते हैं ये पानी का बहुत बड़ा जखीरा है, दरिया और समंदर को भी कहते हैं, और कहते हैं कि यम ऐसे पानी के जखीरे को कहते हैं जो नीचे की तरफ जो है वो बह रहा हो। तो पानी का बहुत बड़ा जखीरा जो नीचे की तरफ बह रहा हो, और तयम्मुम के अल्लाह के हुक्म की तामील का इरादा है ना, इरादा करना, उसमें सोचना सोचना नहीं है। तो मैं ये पानी पानी के जखीरे को कहते हैं और अल्लाह के हुक्म की तामील का इरादा करना, इन दोनों पे मैं सोच रही थी कि मुनासबत कैसे पैदा होती है कि पानी नीचे को बह रहा है, तो अतात ही बात है ना कि बहुत बड़ा पानी का जखीरा है लेकिन वो बह रहा है, उसका काम है बहना। तो इसी तरह मुसलमान का काम क्या है, अल्लाह की अतात करना। तो तयम्मम इरादे के मानी में इस्तेमाल होता है। खबीर ये ऑपोजिट किसका है, तो ये बात का, लस्तुम लस्तुम, आपने जो है वो ला पढ़ा था ना, फिर लैसा पढ़ा था, लम पढ़ा था, लन पढ़ा था, तो ये कई अल्फाज जो थे आपने नहीं के लिए पढ़े थे। और यहां पर जो है ये लैसा जो है ना, ये उसी से है, उसकी जैसे गर्दान नहीं बनती, जैसे काना की गर्दान है ना, तो इसी तरह लस्तुम नहीं हो तुम, या जो है हरफे इल्लत है लेकिन आपको जो है वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। और इसका रूट क्या है, लाम या सीन। मानी इसके क्या हैं, मानी इसके नहीं के हैं, नहीं। अच्छा, इसकी जो है वो और क्या खासियत है नहीं की, जैसे माँ जो है ये कहाँ इस्तेमाल होता है, माजी पर, लम और लन कहाँ इस्तेमाल होते हैं, फेल मुजारे पर जो है वो दाखिल होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो नहीं जो है इसके लिए लैसा कहते हैं, इसका सिर्फ माजी ही आता है और पूरे सीगे इस्तेमाल होते हैं, और माजी और हाल दोनों मानी देते हैं। जैसे लस्ता नहीं है तू, लसना नहीं है हम या नहीं थे हम, और यहाँ पे लस तुम नहीं हो तुम, इस तरह जो है ये मानी देता है। ये फेले नाकिस है क्योंकि इसका सिर्फ माजी ही आता है और माजी के पूरे से इसके इस्तेमाल होते हैं। ला लम लन ये फेल मजारे पर दाखिल होकर उसको नफी के मानी देते हैं। और भी बहुत से अल्फाज हैं। बेआखिजी ही इसका रूट है हमजा खा जाल, हमजा खा जाल, और इसके मानी होते हैं अखज करना, पकड़ना। अब यहां पर इस्तेमाल हुआ है इसम फाइल आखिज, ये इसम फाइल है, आखिजून इसकी जमा है, और आखिजीना ये भी जो है ये जमा के लिए है लेकिन यहाँ पे नून नजर नहीं आ रहा। आखिजीन भी हो सकता है, आखिजून, ये दोनों जमा है, पकड़ने वाले लेने वाले। तुह में दू गैन मीम दुआद वमा दुआ, ये अहम लफ्ज है, इसके मानी है कैफियत नजर, कैफियत नजर के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है, और कैफियत नजर के लिए कुरान में 7 लफ्ज आए हैं और इसका दर्जा 5वां है। इसके मानी होते हैं किसी का अपनी आंख बंद कर लेना, चश्म पोशी करना। अब आप देखें कि बाज़ुकात कोई बहुत बुरी चीज होती है, देखना इंसान उसको देखने या जानने के बावजूद ऐसे जाहिर करता है कि जैसे उसको पता नहीं है, ऐसे होता है ना, एक दफा सुनी अनसुनी करना जो मतलब की चीज ना हो। और इसी तरह एक चीज है नजर आ रही है तो ऐसे अपनी आंखों को उससे बचाना या आंखों को उससे हटाना कि जैसे जो है अनजान बनना। तो ये लफ्ज इस्तेमाल होता है अगमदा अनिशई, चश्मपोशी करना, किसी का अपनी आंख बंद कर लेना, बुरी चीज को देखने या जानने के बावजूद दूसरे को ऐसा मालूम करना जैसे उसको उसके मुतल्लिक कुछ पता ही नहीं है, कोई खबर नहीं है। तो उर्दू में भी बड़ा मशहूर ये मुहावरा है कि जो है वो अगमाज़े नजर बरतना, कि उसने तो चश्म पोशी कर ली। अशैतानु, इसके दो मादे थे, जब तावुज पढ़ा था तो आपको बताए थे शीन अलिफ तोए, गुस्से से जल जाना, शैतान आग से पैदा हुआ। इसी तरह शीन तोए नून, दूर अल्लाह की रहमत से दूर, यादुकुम واو عین دال، یہ ذوی الاضداد میں سے ہے، امید دلانے کے لیے بھی آتا ہے، ڈرانے کے لیے بھی آتا ہے، وعدہ کرنا. پھر اس کے بعد اہم لفظ ہے فا قاف را، فا قاف را، اس کے معنی ہوتے ہیں توڑنا. توڑنے کے ساتھ یہ تنگ دستی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تنگ دستی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ تنگ دستی کے لیے کیسے استعمال ہوتا ہے، جیسے ایک طرف اس کے معنی ہے توڑنا اور دوسرے اس کے معنی غربت کے بھی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اصل میں فا قاف را یا فا قاف را تا یہ ریڑھ کی ہڈی کے منکے کو کہتے ہیں اور اس کی جمع فقار ہے، فقرتن ریڑھ کی ہڈی، فقرن ریڑھ کی ہڈی یا کمر توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. استعمال یوں ہوتا ہے کہ فقرت الداہیہ، اس پر ایسی مصیبت نازل ہوئی جس نے اس کی کمر کی ہڈی کو توڑ دیا، تو فقر کمر توڑنے والی انتہائی مفلسی کو کہتے ہیں، کیونکہ کوئی ایسی مصیبت آئے کہ جس سے جو ہے انسان کی جیسے ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ٹوٹ کر رہ گئی ہے نا، تو کیا کہتے ہیں کہ بڑی سخت مصیبت ہے، تنگ دستی ہے. اچھا اگر آپ اس کو توڑنے کے معنی میں لیں فا قاف را، کمر توڑنا، ریڑھ کی ہڈی کے منکے کو کہتے ہیں جس میں سوراخ ہوتا ہے اور اس کی جمع فقار ہے، اب موتی پرونے کے لیے اس میں سوراخ کرنا، اس طرح بھی آتا ہے فقر الخرز. اور فاقرتن ایسی مصیبت کو کہتے ہیں جو ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دے، اسی سے فقیر، ایسے اس کے حالات ہو گئے کہ جیسے فقیر بن گیا، اس کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. اور آپ ویسے ریڑھ کی ہڈی پہ غور کریں کہ جسم کے اندر یہ جو ریڑھ کی ہڈی ہے یہ پورا ایک جسم پورا جو ہے نا اس کو سپورٹ دیتی ہے، ایک جو ہے وہ مضبوطی دیتی ہے، بیس دیتی ہے. تو اگر کسی کی ریڑھ کی ہڈی ہی جو ہے اس میں کچھ تکلیف ہو جائے، کوئی درد ہو جائے، اس کی کوئی ڈسک ہل جائے، اٹھنا بیٹھنا کرنا کرانا کچھ سب چیزوں سے انسان معذور ہو جاتا ہے. تو آپ اس سے اس کو یاد رکھیں کہ فو فا قاف را اصل میں ریڑھ کی ہڈی کے منکے کو کہتے ہیں جس میں سوراخ ہوتا ہے. اور پھر اسی سے یہ لفظ ادھار کے معنی لے کر ایسی مصیبت کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دے. بعض اوقات ریڑھ کی ہڈی نہیں ٹوٹی ہوئی ہوتی، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے نا، جیسے جان نہیں رہی جسم میں، ایسے حالات انسان پر آتے ہیں. تو فقر یا یعدکم الفقرا فحشا فاحا شین فحش، اور اس کی جمع جو ہے فحشا ہے، فحشا بھی آتی ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں بے حیائی کے، بدکاری کے، اور اس میں کھلی چھپی ہر طرح کی برائی مراد لی جاتی ہے. پھر یعدکم واو عین دال، اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ ذوی الاضداد میں سے ہے، کسی کو وعدہ دینا، امید دلانا، یقین، اور اس کے ساتھ وعید ڈراوے کے لیے بھی آتا ہے. یوت الحکمتا ہا کاف میم، ہا کاف میم آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے نا، ہا کاف میم جو ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہاں اس کے معنی جو ہیں وہ حکمت اور دانائی کے بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کسی محکم چیز کے لیے، دانائی اور فیصلہ کرنا اس کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کسی مضبوطی کے لیے بھی. ہا کاف میم جو ہے کسی چیز کی اصلاح کے لیے اسے روک دینا، یہ جو لگام ہوتی ہے نا اس کو بھی حکم کہتے ہیں، کیونکہ حکمت الدابۃ جب جانور کو لگام دی جاتی ہے تو لگام کیا کرتی ہے؟ اس کو کنٹرول کرتی ہے، اس کو روک کر رکھتی ہے. حکمت السفینۃ، میں نے سفینے کو روک دیا، وحکمتھا اور اس کو لگام دے دی، जैसे अरब लोग जो हैं, किसी शायर ने कहा कि बनी हनीफा आकिमु सुफहा अकुम, ए बनी हनीफा अपने बेवकूफों के मुंह में लगाम दे दो। तो ये जो हकम है, फिर इसके क्या मानी है? आप एक तो इसके असल मानी लगाम के याद रखें, फिर इसी से हिकमत है, इसी से मोहकम है, इसी से हाकिम है, इसी से हकीम है। हाकिम क्या करता है? लगाम देता है ना। हकीम क्या है? हकीमाना फैसले, हिकमत वाली चीजें। तो इस तरह ये लफ्ज जो है वो बड़ी वुस्सत के साथ जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। बड़ा मजा आता है जब जो है वो असल बात पता चल जाए ना, कि असल किसको कहते हैं, और फिर उधार मानी लेकर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होने लगा। और मैं अक्सर अरबी पे गौर करती हूँ, मैं कहती हूँ कुरान कितनी खूबसूरत जबान है, कि अल्लाह ताला ने वो अल्फाज जो वो इस्तेमाल किए करते थे उनको इस्तेमाल किया। और उनका तो हर लफ्ज ऐसे लगता है कि जब भी कोई जिक्र होता है तो जानवर का जरूर जिक्र होता है ना। औरत को तलाक दे दी तो वो ऊंट के पायबंद को खोल दिया, उसको संभाल के रखा तो उसको बांध दिया, इसी तरह उसको लगाम दे दी तो इसी से हिकमत निकल आई, और भी बहुत से अल्फाज। बहरहाल यूतिल हिकमता, और उलुल अलबाब तो आपको आता ही है, लाम बाबा लुब, ये इस्तेमाल होता है किसके लिए? किसी भी चीज का खुलासा मगज, उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। लुबे लुबाब, दिमाग के लिए भी ये लफ्ज आता है, क्योंकि दिमाग के अंदर मगज होता है ना, तो दिमाग के अंदर जो मगज होता है तो वो क्या होता है? वो हर चीज का खुलासा है, क्योंकि अगर किसी के पास अकल ही ना हो तो फिर उसके पास जो है वो कुछ भी नहीं। तो खालिस अकल के लिए लुब लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें वहम, जज्बात और शक जो है वो ना हो, उससे वो पाक हो। बात कहते हैं कि लुब के मानी पाकीजा और सुथरी अकल के हैं, और बात कहते हैं जो अकलमंद लोग हैं उसको जो है वो अलबाब कहते हैं। रजुलुन अलबब, अकलमंद आदमी को, इसकी जमा अलिबा भी आती है। और मलबूब अरब लोग ऐसे बंदे को कहते थे जो अकलमंदी में मशहूर हो। अलब्बा बिल मकान, किसी मकान पर कयाम करना, असल मानी क्या है? ऊंट का किसी मकान पर अपना लब्बा यानी अपना सीना रख देने के है ना। देखा ना, ऊंट का आ गया ना जिक्र, लबब तो हूँ सीने पर मारना, लब्बा तुन सीना। अब सीने को भी लब्बा कहते हैं, क्यों? वो कुव्वते अकली का मकाम है, वहां पे अकल होती है, क्योंकि दिल भी होता है ना, दिल कह लें या दिमाग कह लें। आयत नंबर 270 में लफ्ज है नजर, तुम नून जाल रा नजर। नजर के मानी है, आपने नजर का लफ्ज तो वैसे उर्दू में बहुत कसरत से सुना है ना, आप कहती हैं कि मैंने जो है वो नजर मानी है। तो नून जाल रा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है नजरों नियाज देना, और डराने के लिए भी आता है, जैसे नजीर, डराने वाला, डराने वाले के लिए भी। तो नजरों नियाज देना, कोई नजर मान लेना। आयत नंबर 271 में है तुखफूहा खाफा या खुफिया, भी इसी से है, तू तू हा हमजा ता या अता करना देना। युकफिर काफारा इनकार करना या छुपा देना, हकीकत को छुपाना। काफिर क्या करता है? हकीकत का इनकार करता है। किसान को भी काफिर कहते हैं, वो दाने को मट्टी में छुपा देता है। तो यहां पे ये छुपाने मिटाने के मानी में इस्तेमाल हुआ है। सैयात, सैयात उन वाहिद है, सैयात जमा है, और इसका रूट है सू, सीन वो हमजा बुराई के लिए आता है। सौआतुन, ये लाश को भी कहते हैं, क्योंकि उसका लाश का ऐसे पड़ा हुआ होना बुरा लगता है ना। आयत नंबर 272 में लफ्ज है इब्तिगा, तो बागैन या बगा यबहू, चाहना किसी चीज को गौर से देखना, तलब करना। वजहुन, चेहरे को कहते हैं, اور یہاں پر اس سے مراد اللہ کی رضا ہے. یوفا وفا یا وفا کرنا پورا کرنا. او سے روح ہا سوادرا گھیراؤ گھیر لینا کسی کو روک لینا. یستتیعونا یستتیعونا تو اے وین تو ان کام کرنا. دربن مارنے کے لیے آتا ہے لیکن دربن فی الارض محاورہ ہے, زمین پر چلنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. جب ہوتا ہے نا دربن فی الارض جیسے زمین میں دوڑ دھوپ کرنا, زمین میں چلنا پھرنا, اور بعض اوقات یہ جو تجارت حلال کمائی وغیرہ اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے دربن فی الارض. ویسے تو ہاتھ سے مارنا لیکن پاؤں زمین پر مارے جاتے ہیں نا جب چلا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے پاؤں زمین پر لگتے ہیں نا. جاہل جیم ہا لام اس کا روٹ ہے. جیم ہا لام اس کے معنی ہے جیم ہا لام کے نادانی. اغنیا غنی واحد ہے, اغنیا اس کی جمع ہے, اور غنی جو ہے اس کے معنی ہوتے ہیں دولت مند امیر. پھر عام لفظ ہے تعفف, اس کا روٹ ہے عین فا فا. عین فا فا اس کے معنی ہے عین فا فا کے جیسے یہ پاکیزگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عفت پاک دامنی, کیونکہ عفت سے یہ لفظ پاک دامنی خودداری نہ مانگنا اس کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تعفف بچنا بچے رہنا. عفت میں بھی کیا ہوتا ہے انسان اپنی پاکیزگی کو اپنی پاک دامنی کو بچا بچا کے رکھتا ہے. پھر اس کے بعد ہے بسیماہم. سیماہم اس کا روٹ ہے سین و میم. سین و میم اس کے معنی ہوتے ہیں سیما نشانی. اسی سے ہوتا ہے جیسے یہ چہرے کے لیے بھی پھر استعمال ہوتا ہے نشانی کے لیے بھی چہرے کے لیے بھی سیما ہوں کہ ان کے چہروں کو. الحافہ لام ہا فا. لام ہافا آپ دیکھیں اردو میں بھی آپ استعمال کرتی ہیں لحاف. لحاف میں کیا ہوتا ہے لحاف جو ہے وہ بالکل ساتھ جو ہے وہ لگ جاتا ہے چمٹ جاتا ہے. تو اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں چمٹنا, کسی کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جانا, کسی کو نہ چھوڑنا. اور جو مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی کے ساتھ جو ہے بالکل ہی چمٹ جاتے ہیں. تو یہاں پر بھی یہ لفظ جو ہے یہ چمٹنے کے لیے استعمال ہوا ہے. اوڑھنے کا کپڑا لحاف. لحاف جب آپ نے لیا تو آپ اس کے اندر چھپ گئے, تو الحاف کے معنی ہوتے ہیں چمٹ کر مانگنا, ساتھ لگ کر مانگنا. فلہم اجرہم عند ربہم. اجر واحد ہے, اجور اس کی جمع ہے. خوف یعنی اس کا روٹ ہے یحزنون حازنون حزن حزن, اور ماضی کا ایک غم ہوتا ہے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 275 الذین یاکلون الربا. ربا اس کا مادہ ہے رابا وو, اور یہ جو لفظ ہے جیسے کہتے ہیں بلند جگہ یا ٹیلے کو ایک اونچی جگہ کو, اور اس کے معنی میں بلندی بھی پائی جاتی ہے, اور اسی سے بڑھنا اور بلند ہونے کے معنی بھی یہ دیتا ہے. کسی پر بلند ہونا اربع علی, کسی کی نگرانی करना, इसी से है रबैतुल वलद, मैंने बच्चे की तरबियत की, इसी से फिर रब पालने वाला, जैसे रा बाबा अगर आप कहें तो पालने वाले के लिए, लेकिन रा बा वो जो है ना बढ़ना फूलना, जैसे सांस जब फूलता है तो सांस फूलकर ऊपर को चढ़ता है ना, उसको भी कहते हैं रब वो, क्योंकि सांस फूले हुए आदमी के मुतल्लिक कहते हैं कि उसका सांस जब फूलता है तो ऊपर को चढ़ता है, तो उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह अरबिया तो जासूस के लिए भी आता है। तो रिबा बढ़ना आम लफ्ज है, यतखब्बा तो हूँ खपती, उर्दू में भी आपने ये लफ्ज सुना है खपती, और खा बा तोए, इसके मानी होते हैं किसी को मार मार कर बदहवास कर देना। किसी को मार मार कर बदहवास कर देना, ऐसा शख्स जिसके अंदर जो है वो अकल ना पाई जाती हो। और ये लफ्ज जो है कहते हैं कि ये उस वक्त अहले अरब इस्तेमाल करते थे, जिस ऐसे शख्स के लिए इसका इस्तेमाल करते थे जिस शख्स के अंदर अकल नहीं होती थी, जब जिसकी अकल ठीक तरह काम नहीं करती थी। बजाहिर तो अकल है, लेकिन ये है कि जब काम करने का वक्त है तो उसकी अकल जो है वो ठीक तरह काम ही नहीं कर रही, तो अहले अरब उस वक्त इस लफ्ज का इस्तेमाल करते थे। दीवाने को भी कहते थे कि ये मजनू है, खपती है, इसको जिन पड़ गए हैं, इसे जिन्होंने दीवाना बना दिया है। और मजनू कौन सा होता था, जैसे जिसे जिसकी अकल काम ही नहीं करती, मुस्तकिल उसको एक बीमारी हो गई है ना, मजनू कह दिया। जिसे वक्ती तौर पर ये होता था उसको कहते थे ये खपती हो गया। और खपतल लैल, रात की तारीकी में भटकना, खपतल लैल, खाबतुल लैल, ऐसे शख्स को कहते हैं जिसे दाएं बाएं का कोई होश ना हो। इसी तरह खबता इशवा, ऐसे लोगों के लिए ये मुहावरा बन गया जो बसीरत से बिल्कुल महरूम हो जाए, अंधे भैंसे की तरह इधर उधर जो है वो भटक रहे हों। तखब्बत हो शैतान, मस्सा हो शैतान, या फिर उसे कहें कि जो है वो शैतान ने उसको छू कर बिल्कुल ही पागल और दीवाना कर दिया है। मस मस मीम सीन सीन, और छूने के लिए तीन लफ्ज हैं, एक है मस, एक है लमस और एक है तमस। तो मस होता है जिस्म के किसी हिस्से के साथ किसी चीज का लगना, लमस होता है हाथ या उंगलियों से किसी चीज को छूना टटोलना, और तोए मीम सा अली बाता सा होता है ना, तो उससे जो हैज का खून आना, उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। बे बा या आयन, शीन रा या भी और बा या आयन भी, ये खरीदो फरोख्त के लिए आता है, इस जवील अज़दाद में से है, क्योंकि एक खरीद रहा होता है दूसरा बेच रहा होता है, तो दोनों मानी ये देता है। और अहल्ला और हर्रमा ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, एक को अल्लाह ने हलाल किया दूसरे को हराम किया है। मोएजातुन, मोएजातुन वास से है, हाँ वो आयन जोए, ये लफ्ज आप कसरत से उर्दू में भी इस्तेमाल करती हैं, वाज करना, वो आयन जोए। और ये लफ्ज उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब ऐसी नसीहत जो दिलों को नरम करे, नसीहत करना, इसी से जो है वो वाज है, और इसी से मोइज़ा तो उनका लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। और वैसे क्या है इसके मानी, क्या है, याद दिलाना, दिलों को नरम करना। फनतहा, फनतहा नून हा या नहीं से है, मुनकिरात से रुकना भी और रोकना भी, नहीं नहीं होता है ना जिससे मना किया जाता है। सलफ, सीन लाम फा, सलफ, इसके मानी है जैसे उर्दू में भी आप लफ्ज इस्तेमाल करती हैं असलाफ, जो पहले गुजर गए। सलफ के मानी होते हैं गुजरना, असलफा आगे भेजना, असलाफ जो पहले गुजर गए। तो सलफ इसका ऑपोजिट खलफ, जो उनके पीछे आने वाले हैं, खलीफा फिर बन जाते हैं ना। वमन आदा, आदा, और आदा का लफ्ज जो है इसका मतलब होता है ना एआदा करना, एआदा करना, जैसे उस काम को फिर से करना। और आप कहती हैं उर्दू में भी कि फलां चीज जो है ना फिर ऊद कर आई, ऊद कर आना। तो ऐन वो दाल इसके मानी होते हैं दोबारा करना, एआदा करना। वमन आदा जो दोबारा करेगा। यम हकू, यम हकू का लफ्ज अहम है, और ये लफ्ज जो है ये इस्तेमाल होता है मिटाने के लिए। इसका रूट है मीम हा क़ाफ, और इसके मानी है मिटाना। अब आप देखें कि मिटाने के लिए भी कुरान में मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। जैसे कभी ऐसा होता है कि कोई चीज जो है उसको बिल्कुल ही मिटा दिया जाता है, उसको बिल्कुल ही हटा दिया जाए, और कुछ ऐसा होता है कि उसको मिटाया तो है लेकिन जैसे फिर भी वो कुछ ना कुछ जो है वो नजर आता है। तो कुरान ने मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए मुख्तलिफ लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, और उनमें से एक ये लफ्ज है मिटाना। अब यहां पर आप देखें कि किस तरह से मिटाना है। एक है जैसे तमासा कुरान में इस्तेमाल हुआ है कि रगड़ कर इस तरह मिटाना कि कुछ असरात बाकी रहें। तो ये मीम सीन रगड़ कर इस तरह मिटाना कि कुछ असरात बाकी रहें। मीम हा काफ किसी चीज का जोर खत्म कर देना, उसको कमजोर करना, मुजमहिल करना, उसे बेजान कर देना, बेबरकत। तो मीम हा काफ के मानी है घटना, कम होना, और ये जिद है रबा की, रिबा की। ये रिबा इस्तेमाल हुआ ना, यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात। तो जो युर्बी है ना ये इसका ऑपोजिट है यमहकु। तो मीम हा काफ इसके मानी है किसी चीज का जोर खत्म करना, उसको बेबरकत कर देना, और उसको बेजान कर देना, बातिल कर देना, यमहकु। फिर इसका तीसरा दर्जा है महव करना। उर्दू में भी आप करती हैं फिर उसको महव कर दिया, ऐसा खत्म किया कि कोई निशान ही बाकी ना रहे। और चौथा दर्जा होता है नसख, किसी चीज को मिटाकर उसकी जगह दूसरी चीज ले आना। तो यहां पे जो है ये इस्तेमाल हुआ है महक। यूरबी का रूट क्या है? इसका रूट जो है रा बा वो भी हो सकता है और रा बा या भी। जैसे जो है वो पालना पोसना, तरबियत करना, परवान चढ़ाना, कफ्फार, असीम, ये दोनों मुबालगे के सीगे हैं। काफा रा से है और दूसरा हमजा सामीम से। और कफ्फार कौन है? हकीकत पर पर्दा डालने वाला। काफिर भी इसी से है, असल चीज को छुपा देने वाला। असीम फिर गुनागार को कहते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी ऊंटनी जो तेज चल सकती हो फिर तेज ना चले उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। आयत नंबर 270 में खौफुन, तो एक है खौफ का लफ्ज और दूसरा है यहज़नून का। तो खौफ किसका होता है? मुस्तकबिल का। और हिज्न जो होता है ये किसका होता है? माजी का, क्योंकि जो गुजर जाता है तो उससे इंसान जो है वो अफसोस करता है। आयत 278 में लफ्ज है वजारू, वजारू जो है इसका रूट है वो जाल रा, छोड़ना इसके मानी है। कुरान में इसके लिए 7 लफ्ज आए हैं और इसका दर्जा है 5वां। ये अफाले नाकिसा में से है, इसका इस्तेमाल सिर्फ मजारे और अमर पर होता है, माजी इसका इस्तेमाल नहीं होता। इसके मानी होते हैं किसी चीज को हकीर समझकर छोड़ देना, और या फिर क्या हुआ कि किसी काम के करने पर मुखातिब को किसी इतराज की इजाजत ना देना। जैसे आप कहती हैं कि जरनी, लेट मी डू दिस, तो उसको आप कहती हैं तुम पीछे हटो बस मैं करती हूँ, दूसरे को आप मुखातिब को मुदाखलत की इजाजत भी नहीं देते। तो ये होता है वजारू। बकिया बाकी रहना, वाकाफिया फाजनु, हमजा जाल नून उजुन से है, उजन कानों को कहते हैं। तो अब कानों से अच्छी तरह सुन लो, फाजनु आगाह हो जाओ, ठीक है, कानों से सुन लो आगाह हो जाओ। फिर लफ्ज़ है हा रा बा का हर्ब, और हर्ब का लफ्ज़ जो है ये इस्तेमाल होता है जंग के लिए, है ना, हर्ब कहते हैं जंग को। किसी का सामान छीन लिया जाए तब भी कहते हैं हुरिबर रजुल, तो उसका सामान जो है वो छीन लिया गया। और माननी लिहाज से भी हर्ब हो सकता है, एक होता है ना वैसे जंग होना तो हर्ब है, एक है कि कहीं जंग की आग भड़काना, तब भी ये इस्तेमाल किया जाता है। मस्जिद के अंदर जो मेहराब होती है उसका रूट भी हाराबा से है, क्योंकि जो मेहराब में है तो वो क्या कर रहा है, वो तो इबादत कर रहा है। अब शैतान क्या कर रहा है, शैतान आकर उसको भटकाता है, तो मेहराब गोया के वहां पे खड़ा होकर वो शैतान से जंग कर रहा है, उसके दिल में ख्याल आ रहे हैं, वसवसे आ रहे हैं और उनको हटा रहा है। तो मेहराब का रूट भी हाराबा से है कि जब इंसान जो है शैतान और ख्वाहिशात नफसानी से जंग करता है तो मेहराब जंग करने की जगह। तो दोनों तरह ये इस्तेमाल किया जाता है, मादी जंग हो या फिर जो है वो ख्यालात में एक जंग हो। हर्ब रूसु, रा हमजा सीन रासुन, ये असल में सर को कहते हैं, रासुन के मानी क्या होते हैं, सर को कहते हैं। इसी से ये लफ्ज जो है किसी चीज की असल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रासुल माल, माल की असल ये है। जैसे है कि आपने तिजारत की और आपके पास असल माल $100 था, उस पर जब आप तिजारत करके नफा आपको मिला तो एक वक्त ऐसा आया कि आपके 200, 300, 400, 500 हो गए। तो आपसे अगर कोई पूछे कि जब आपने तिजारत शुरू की तो रासुल माल क्या था, तो आप क्या कहेंगी, $100 था, असल माल तो 100 था, बाकी सारा उस पर फिर नफा मिल गया। तो जिस्म के अंदर सर जो है इसकी बड़ी अहमियत है, असल चीज है ना, सर अगर हट जाए तो फिर धड़ की क्या हैसियत है, तो असल चीज। तो रऊस जो है फिर ये सर को भी कहते हैं, रासुन की जमा है और उसके साथ ये लफ्ज जो है वो असल सरमाए के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रऊस रासुन की जमा है, मानी है सर के और मुराद है असल रकम। उसरतिन आइन सीन रा, इसका ऑपोजिट क्या है, युसरा, है ना। तो आइन सीन रा तंगी के लिए आता है और या सीन रा आसानी के लिए आता है, लोग नाम भी रखते हैं युसरा। इन्ना माल उसरी युसरा, वहां से आप याद रख सकती हैं, उसर तंगी है और युसर जो है वो आसानी है, सहूलत है। तुवफा I-281 तुवफा वफा या वफा करना, पूरा पूरा देना। आयत नंबर 282 लफ्ज है तदायंतुम, तदायंतुम इसका रूट है दाल या नून देन, आगे भी है ना देन इन, वो भी यही लफ्ज है। तो दाल या नून, देन। देन कहते हैं उधार को, ऐसा उधार जो इंसान अपनी जरूरतों के लिए किसी दूसरे से लेता है, जाती जरूरतों के लिए कोई किसी से उधार लेता है, और शर्त ये होती है कि उसको वापस भी कर देगा, तो ये उधार है। ठीक है, फिर उधार के लिए कुरान में एक और लफ्ज आया है और वो है कर्ज का, काफ रा द्वाद। काफ रा द्वाद जो है इसके मानी होते हैं काटना, कर्ज देना। तो आप अपनी जरूरत को काटते हैं तो दूसरे को कर्ज देते हैं ना। तो एक है कर्ज और एक है देन। तो देन क्या होता है, ये भी ये है कि किसी भी तरह की अदायगी है, जिम्मेदारी है, ये कर्जे की हो सकती है, जाती भी हो सकती है, किसी भी चीज की हो सकती है। लेकिन कर्ज क्या है कि जाती जरूरत के लिए है और उसके साथ जो है वो उस वापसी की शर्त भी है। तो है दोनों ही कर्ज ही है ना, एक है देन और एक है कर्ज। तो ये दोनों लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुए हैं, दोनों में बड़ा बारीक सा फर्क है कि जो कर्ज होता है आमतौर पे, जैसे छोटा मोटा कर्ज, तो जाती जरूरत के लिए लोग कर्ज लेते हैं, और शर्त क्या होती है कि जब कर्ज लिया है तो उसको वापिस भी देना है। क्योंकि कर्ज के मानी क्या होते हैं, काटना, किसी जगह से गुजर जाना, उससे तजावज कर जाना, उसके लिए भी आता है। जैसे कताल मकान, आप उस जगह से गुजर गए तब भी आता है। और कर्ज उस माल को भी कहते हैं जिसको किसी जरूरत पूरा करने के लिए किसी को दिया जाए, मन दल्लज़ी युक्रिदुल्लाह कर्दन हसना, तब भी इस्तेमाल किया जाता है। और कर्जे हसना का मतलब क्या है कि उसकी कोई मुद्दत नहीं होती, आप फिर उसको तंग नहीं करते। कर्जे हसना कौन है जो अल्लाह को कर्जे हसना दे, है ना। और देन में कहते हैं कि ये जाती भी हो सकता है, तिजारती भी हो सकता है, या किसी भी चीज के लिए जो है वो हो सकता है कर्ज। तो थोड़ा इसके अंदर जो है देन के अंदर वुस्सत पाई जाती है। दोनों तरह आप इसका तर्जुमा कर सकते हैं, एक है देन और दूसरा है कर्ज, दो लफ्ज हैं जो हमें मिलते हैं। फिर इसके बाद मुश्किल लफ्ज है अजल। अब ये तो आपको आता होगा, मेहर में आपने याद किया था ना, मेहरे मुअज्जल और मेहरे मोजल, है ना। तो एक जिसमें एक मुद्दत दे दी जाती है और दूसरा जो उजलत, हाथ लगाने से पहले जो है वो उसकी अदायगी जरूरी होती है। तो यहाँ पे अजल है जिसकी एक मियाद है। ठीक है, तो अजल के मानी होते हैं मियाद। ये मौत के लिए भी आता है कि अजल आई ले गई, उसकी मौत लिखी थी, उसका वक्त लिखा था, और जब वो आया तो वो शख्स जो था वो, या वो औरत जो थी वो चली गई। तो अजल एक मुद्दत को भी कहते हैं, एक वक्त को कहते हैं। फिर उसके बाद है यहां पर मुसम्मन, और मुसम्मन के मानी होते हैं मुकर्रा, मुकर्रा। अब आप देखें कि जैसे एक मुद्दत है, और मुद्दत कैसी है कि लिखी हुई है, मुद्दत मुकर्रर है, तो उस वक्त ये लफ्ज जो है ये बोला जाता है मुसम्मन। तो इसका फिर रूट क्या है? रूट क्या है? मीम असल में आपको नजर आ रहा है ना, तो ये मीम जो है ये परेशान कर रहा है, तो ये परेशान करता है क्योंकि नजर आता है तो लगता है कि शायद इसी से जो है ना फिर एक रूट बन सकता है। इला अजल मुसम्मन वक्ते मुकर्रा तक फक्तबूहू, पस उसको लिख लो। वल यक्तुब, अब फक्तबूहू वल यक्तुब कातिबुन यक्तुबा, फल यक्तुब। अब इसका ही आपको बहुत तकरार मिलेगी, और इसका रूट क्या है? काफ ताबा, कताबा के मानी है लिखना। फिर है याबा, वला याबा, याबा हमजा बा या, इसके मानी होते हैं इनकार करना। वल युमलिल, मीम लाम लाम, इसके मानी होते हैं इमला करवाना। मीम लाम लाम, इमला करवाना, लिखवाना। यबखस, बा खासीन, इसके मानी है कमी करना। कमी करने के लिए कुरान में 13 लफ्ज आए हैं और ये इसका 11वां दर्जा है। बखासा, कमी करना, नाकिस, घटिया, कमतर के लिए ये लफ्ज बोला जाता है। ऐसी चीज जैसे अच्छी चीज के बदले में थोड़ी चीज, हकीर चीज, कम चीज। सफीहन, सीन फाहा, ये किसे कहते हैं?
बेअकल,
बेअकल को। और यकूलु सुफहा, आप पढ़ चुकी है ना, तो अब इसकी शक्ल आपको मुख्तलिफ नजर आ रही है। सफीहन, सीन फाहा। फिर दोबारा आ गया है अई युमिल्ला, कि वो इमला करवाए। और इमला करवाना क्या होता है कि एक बंदा लिखवा रहा होता है और दूसरा बंदा जो है उसको लिख रहा होता है, इमला करवाना। तो अब तो इमला का इतना रिवाज नहीं रहा, पहले जो थी वो इमला करवाई जाती थी और क्लासेस में, स्कूलों में भी तो टीचर बोल रही होती थी और स्टूडेंट जो थे वो लिख रहे होते थे। तो ये बोला जाता है लिखवाने के लिए, डिक्टेशन। फिर उसके बाद है रिजालिकुम, रिजालिकुम तुम्हारे मर्दों में से, है ना, मिर रिजालिकुम, तो रजुल। वम्रातानी, दो औरतें, इमरातुन एक औरत को कहते हैं ना, इमरातान दो औरतें। फिर उसके बाद दोबारा याबा आ गया, इनकार करना, हमजा बा या, याबा। दुरु दालैन, वो बुलाना, दो बुलाए जाएं। इसके बाद है अहम लफ्ज है दो के बाद, क्योंकि आप देखेंगे दो जो है वैसे बिल्कुल ही मुख्तलिफ सा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको तवज्जो से देखें तो आपको बात समझ में आती है कि जब वो बुलाए जाएं। तो इसके बाद है तस अमू, वला तस अमू। तस अमू का रूट है सीन हमजा मीम सामा, इसके मानी होते हैं थकना। थकने के लिए भी कुरान में मुख्तलिफ अल्फाज आए हैं। और सामा, ये इसका पहला दर्जा है, वैसे थकने के लिए 6 आए हैं। आपने आयतल कुर्सी में छठा दर्जा पढ़ा था, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, आसमान जमीन और कायनात की हिफाजत करना, निगहबानी करना अल्लाह को थकाता नहीं है। तो आखिरी दर्जा है अलिफ वाव दाल, और आयतल कुर्सी में है वसीअ कुर्सीयुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और ये पहला दर्जा है। इसके मानी होते हैं किसी काम से तबीयत का उकता जाना, किसी चीज से दिल का उचाट हो जाना, किसी काम को करते करते दिल भर जाना, ये थकने की इब्तदाई हालत है। सगीरन छोटे को कहते हैं, कबीरन बड़ा है, दोनों एक दूसरे के ओपोजिट हैं। फिर अजल आ गया, अजल मुद्दत को कहते हैं, अक्सतु काफ सीन तोए, और ये लफ्ज ज़विल अज़दाद में से है। इंसाफ करना, जुल्म करना, दोनों तरह इस्तेमाल किया जाता है। अकवामु काफ व मीम कौम से है, और वैसे क्या है, खड़े होना, कायम होना, अकामत, कयामत, इन सब का एक ही रूट है। यहां पे इसम तफजील है। करताबू या पढ़ चुकी हैं, क्या रूट है इसका? रा या बा, रैब से। अल्लाह तरताबू, तो कहीं शक ना हो जाए। हादिरतन हाजिर होना से है, मौजूद होना। तुदीरू नहा, तुदीर, ये लफ्ज जो है तुदीर का, इसका रूट है दाल वो रा। इसके मानी होते हैं जैसे शहर को भी कहते हैं दायरा, दौर, दौर भी इसी से है, जैसे किसी चीज का जो है वो फिरना, घूमना। अदारा लेन देन करना। तुदीरू नहा, अब जब तिजारत होती है तो उसमें घूम रही होती है दौलत, एक हाथ से दूसरे हाथ में, कोई ले रहा है, कोई दे रहा है, खरीद रहा है, कुछ बेच रहा है। तो तुदीरू नहा, तुम आपस में जो है वो लेन देन करते हो। रूट दौर है, दाल वोरा। फिर उसके बाद है तबाया, तुम इसका मादा आप बताइए। नहीं, अभी आपने पढ़ा है तबाया, तुम बायाइन, बायाइन ये जबिल अजदाद में से है, खरीदना भी बेचना भी। ये दारा का रूट क्या है? द्वाद रारा। फरेहानुन, फरेहानुन ये रहन से है, और रा हानून का मतलब होता है गिरवी रखना। ये लफ्ज बड़ी कसरत से इस्तेमाल होता है गिरवी रखने का। तो जब जो है वो कोई चीज किसी के पास जो है वो जमानत के तौर पर गिरवी रख दी जाए तो उस पर कर्ज देने वाला फिर कर्ज देता है। तो रहन का मतलब है कर्ज वगैरह के इवज कोई चीज गिरवी रखना। आयत नंबर 283 में लफ्ज है फलयुअद्दी, हमजा दाल दाल, अदा करना। फिर है ओ तोमीना, हमजा मीमनून, अमीन बनाना, इमानत उसके सपोर्ट करना। तो ओ तोमीना और अमानतहु एक ही रूट है। वल्लाहु बिमा तअमलूना अलीम, तअमलूना ऐन मीम लाम से है और अलीम ऐन लाम मीम से है। लिल्लाहि, इसका रूट क्या है? अलिफ लाम हा, इलाह से है। अस्समावाति सीन मीम वाव, बुलंदी के लिए आता है। अल अर्द ये इस्म जिन्स है, वह जमा मुजक्कर मुअन्नस सबके लिए आता है। तुबदू बा दाल वाव, इसके मानी है जाहिर करना। तुखफूहू ये इसका ऑपोजिट है, खाफा या छुपाना। युहासिबकुम, हा सीन बा, इसके मानी है हिसाब करना, गिनना, एहतसाब ख्याल में लाना। ये लफ्ज जो है वो मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गिनती करना, इसका हिसाब रखना, इसके लिए भी आता है, और वैसे अपना मुहासबा करना, जायजा लेना, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐन ज़ाल बा वयुअज़्ज़िबु, ऐन ज़ाल बा, इसके मानी होते हैं चखना, शाबाश, इसके मानी है चखना और बदला देना, अजाब देना, इसके लिए भी आता है। अज़्बुन फुरात, मीठा पानी, इसके लिए भी आता है। तो पानी जैसे चखना, पीना, और अजाब के मानी क्या होते हैं? कि कोई सजा दी जाए। शीन, यही इसका रूट है, शीन या हमजा, शाबाश। ला नुफर्रिकु, क्या मादा है इसका? फाराका, फर्क से है। फारूक, फिराक, فرقہ، فرقت، سمعنا، سین عین، اطعنا، طوی واو عین، طاعون، المصیر، میم صادرہ، یہ شہر کو بھی کہتے ہیں، اور وہ جگہ جہاں لوٹ کر جانا ہے اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. لا یکلفو، لا یکلفو، کاف لام فا، کاف لام فا، اس کے معنی ہے تکلیف دینا، محنت اٹھانا. اردو میں بھی آپ استعمال کرتی ہیں کہ تکلف نہیں کریں، اور پھر آپ کہتی ہیں کہ میں جو ہوں وہ آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی، ہے نا؟ تو تکلیف دینا اور تکلف کرنا، اس طرح اس لفظ کا جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. تکلیف دینا، تکلف کرنا، اور لا یکلفو کہ نہیں اللہ تکلیف دیتا. اور یوں اگر آپ دیکھیں تو جیسے تکلیف کے معنی ہوتے ہیں استطاعت کے مطابق کام لینے کے لیے، جو ہے وہ جیسے کسی سے استطاعت کے مطابق کام لینا، کیونکہ معمولی تکلیف کو اذن بھی کہا جاتا ہے، پھر ضرر بڑی تکلیف کے لیے ہے، اکرہا کرہن جبری تکلیف کے لیے ہے، اور تکلیف جیسے استطاعت کے مطابق، لیکن یہ کہ تکلیف کے لیے آتا ہے. وسعہا، واو سین عین ہی اس کا روٹ ہے، وسعت. یہ جو ہے نا کسابت، کاف سین با، کسابا، اس کے معنی ہے کمائی کے، کمانا، اور یہ کمائی اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بری بھی ہو سکتی ہے. کمائی کرنا یا کمانا، اس کے لیے قرآن میں چار لفظ آئے ہیں. ایک ہے عملہ، عمل جو انسان ارادہ تن کرتا ہے. دوسرا ہے کسب، فائدہ حاصل کرنا، یعنی نفع کے لیے، اپنے لیے ہے، دوسروں کے لیے ہے. اور بعض اوقات یہ جو فائدہ ہے اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی، جیسے حلال کمائی یا پھر حرام کمائی، لیکن لینے والا جو لے رہا ہے وہ اپنے لیے اس کو فائدہ سمجھتا ہے یا دوسرے کے لیے. پھر تیسرا ہے اکتسابا، اکتسابا، اپنے نفع اور فائدے کے لیے کوئی کام کرنا، اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر. اور اکتساب جو ہے، جیسے یہاں پر یہ جو ہے نا، یہ بدی کے معنی میں ہے، تو اس نے اپنے لیے جو ہے وہ بدی کمائی. یہ تیسرا درجہ ہے. پھر اس کے بعد ہے ولا تحمل، تحمل، اور پھر اسرن، پھر حملتا ہوں، پھر آگے آپ پڑھیں تو حملنا. تو یہ الفاظ بہت اہم ہیں. ہا میم لام، بوجھ. قرآن میں بوجھ کے لیے سات الفاظ آئے ہیں، اور پہلا درجہ ثقل ہے، ساقاف لام، ساقولت، آپ نے پڑھا نا، موازینہ ثقلت. دوسرا درجہ ہے حمل کا، ہا پر فتح بھی ہو سکتی ہے اور ہا کے نیچے زیر بھی ہو سکتی ہے. اور جب ہا پر فتح ہوتی ہے، جیسے اس کے معنی ہے بوجھ اٹھانا، بوجھ لادنا. حمل ایسے بوجھ کو کہتے ہیں جو کوئی اپنے پیٹ کے اندر رکھے ہوئے ہو، جیسے پیٹ میں بچہ، درخت کا پھل، بادل میں پانی. بادل کے اندر پانی ہے نا، درخت کے اوپر اندر اس کے پھل لگا ہوا ہے نا، تو اس طرح یہ حمل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور حمل جو ہے ہا کے نیچے کسرہ، اس بوجھ کو کہتے ہیں جو حسی طور پر کسی کی پیٹ، کسی کی پیٹھ پر لاد دیا جائے. اب جو پیٹ کے اندر بچہ ہے دیکھنے والوں کو تو نظر نہیں آتا نا، بادل کے اندر جو پانی ہے دیکھنے والوں کو تو نظر نہیں آ رہے، لیکن ایسا بوجھ جو نظر آتا ہے، جیسے کسی کی پیٹھ پر کوئی بوجھ رکھا جائے تو اس کو حمل کہا جاتا ہے. اس کے ایک معنی یہ بتائے گئے. اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اٹھانے والا جتنا زیادہ سے زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہو اس کو حمل کہا جاتا ہے. उसके लिए भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर रब्बना वला तहमिल है ना, फिर आगे तो हमिलना, तो इस तरह ये लफ्ज है वो इस्तेमाल किया गया है। दोनों तरह आप इसके मानी कर सकते हैं। तो पेट के अंदर है, पेट के ऊपर है, इस्तेताद के मुताबिक है। फिर आम लफ्ज है इस रंग, ये इस रंग लफ्ज जो है ये पांचवां दर्जा है। असल में इसके लफ्जी मानी होते हैं गिरा लगाना, गिरा लगाना। अब ये के जैसे किसी पर जो है जब वो बोझ रखा गया तो रखने के बाद जो है फिर उस पर जैसे गिरा भी लगा दी जाए, तो किसी चीज को जबरदस्ती रोक लेने के भी ये मानी देता है। तो इसर के अंदर दो मानी पाए जाते हैं, एक तो है गिरा लगाना और दूसरा है उसको जबरदस्ती रोक लेना। जबरदस्ती रोक लेना जैसे कोई वादा भी हो सकता है, कोई अहद हो सकता है। मसलन बंदरगाह पर जहाज खड़ा करने की जगह के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, मासर। अब बंदरगाह पर जो जहाज खड़ा होता है उसको बांधा हुआ होता है ना, जबरदस्ती रोका हुआ होता है ना, गिरा लगाई हुई होती है रस्सी को लेकर कहीं, वो जो लोहे के खूंटे से बने हुए होते हैं उनके साथ बांधा हुआ होता है ताकि वो इधर उधर ना हो जाए। तो इसर का लफ्ज दुश्वारियों के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इसी तरह कोई वादा है तो उसके लिए भी, जो बड़ा ही पुख्ता वादा हो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पुख्ता वादा जो है तहरीर के जरिए उस पर गिरा लगा दी गई है, किसी को गवाह बनाकर उस पर गिरा लगा दी गई है। तो ये रुकावटें हैं ना, तो इसलिए इस का लफ्ज जो है इस्तेमाल होता है जैसे रस्सी या कील के लिए जिनके सहारे पर खेमे को खड़ा किया जाता है। इसी तरह कहते हैं कि अल ऐसर वो कंबल जिसमें खुश्क घास भरकर ऊंट की कोहान के गिर्द उसको लपेटा जाता है ताकि इस पर आसानी के साथ सवारी हो सके। फिर देखिए ऊंट की बात हो गई ना, और जानवर को भी बांधा तो ऊंट, तो जानवर से जब तक आगे नहीं चलेंगे अरबी समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि बद्दुआना जिंदगी थी और वो लोग जो थे वो इसका इस्तेमाल तो करते थे। इस रन हाँ, इस रन का यही रूट है, हमजा स्वाद रा इस रन। इसके बाद है मैला त्वाकता, इसका रूट है तौक, और उर्दू में भी तो आप इस्तेमाल करती है ना तौक, क्या मतलब है इसका, हाँ गले में जैसे जंजीर कोई डाल दी जाए तो बेड़ी के लिए, जंजीर के लिए ये लफ्ज जो है वो तौक का इस्तेमाल किया जाता है। उस जंजीर को कहते हैं जो पदाइशी तौर पर गर्दन के गिर्द बनी हुई होती है, जैसे कबूतरी की गर्दन में सोने या चांदी की जो है वो जंजीर डाल दी जाए। अब कबूतरी आ गई, और अभी सिर्फ इतने पे ही बस नहीं है। फिर इसी तरह आप देखें कि ये जो है दूसरे जो तौक है उसके लिए भी इस्तेमाल होता है, जो लोहे के बने हुए होते हैं मुजरिम की गर्दन के गिर्द जो है वो डाल दिए जाए। उसी से ये लफ्ज फिर ताकत के लिए आता है कि ये मुशक्कत है ना, तो ये मुझसे ये काम नहीं हो सकता, मेरे अंदर ये कुदरत नहीं है। तौक वाफू ऐनफावो वग़फिरलना गैनफारा वरहमना राहामीम, ये सब आपने पढ़े हुए हैं। मौलाना वौलामिया वली से है, दोस्त के लिए आता है ना। फन सुरना नून स्वादरा नुसरत मदद अल कौमिल काफिरीन, अल काफिर वाहिद है और काफिरीन इसकी जमा है।